व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, इस पूर्णिमा का इतना बड़ा भारी महत्व है कि तुमने कई गुरु पूर्णिमाओं में सत्संग सुना होगा। ये व्यास जी कौन थे? भगवान राम के गुरु वशिष्ठ महाराज थे। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति थे। शक्ति के पुत्र पाराशर थे। पाराशर होड़ा शास्त्र और पाराशर स्मृति के रचयिता थे। होड़ा शास्त्र मतलब ज्योतिष, किस घड़ी कौन सा ग्रह नक्षत्र और क्या काम करने से क्या फल होगा उनके उंगलियों पर आ जाता था। इतने बड़े महंत। तो एक निषाद भील माची कि नाव में थे और उनको बताया कि इस समय अगर गर्भाधान हो जाए इस थोड़ी देर के बाद तो बेटा होनार होगा, लोगों के जीवन की व्यवस्था करेगा, व्यास बन जाएगा। व्यास का मतलब एक व्यक्ति का नाम व्यास नहीं है। व्यास जो हमारी शक्तियों को बिखरने से बचाकर सुव्यवस्थित करके ईश्वर से मिलाने की समझ सूझबूझ रखे ऐसे सतपुरुष को व्यास कहते हैं। जैसे 28 व्यास हो गए तो अभी के जो व्यास हैं उनके पिता इस युग के महाभारत के रचयिता भागवत के रचयिता जो व्यास हैं उनके पिता पाराशर थे। पाराशर के पिता शक्ति थे और शक्ति के पिता वशिष्ठ थे। तो कितना ऊंचा कुल है। तो उसने अपनी कन्या अर्पण कर दी पाराशर के कहने से और कन्या में गर्भाधान हुआ और बालक 5 साल का हुआ। उसे जनोई आदि दिया तो वो बालक कहता कि अब मुझे एकांत में जाना है, तपस्या करने जाना है। तो माँ ने कहा बेटा पुत्र होता है कि माँ बाप के काम आए। बोले माँ तुम जब कठिनाई में होगी याद करोगी तो मैं आ जाऊंगा। चले 17 स्मृति 18 भागवत रचा, महाभारत ग्रंथ रचा, विश्व का आदि ग्रंथ ब्रह्मसूत्र रचा। माँ को बेटे हुए, राजकुमारों ने शादी की और देव योग से वे राजकुमार किसी युद्ध बुद्ध किसी निमित्त मर गए। अब वो माँ की 3 बहू हैं, विधवा बहु है। राज कैसे संभाले, कौन संभाले? तो अपने पहले पुत्र को सुमरण किया, उसका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण मतलब काले रंग के थे और द्वीप में, नदी के द्वीप में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन, जिनको अपन व्यास कहते हैं, जिन्होंने 18 पुराण रचे, जो सुखदेव जी के पिता थे, उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। तो कृष्ण द्वैपायन का उसकी माँ ने स्मरण किया और वो प्रकट हुए। बेटा 3 बहुएं हैं लेकिन उनके पति तो भगवान को प्यारे हो गए, अब कुल कैसे चलेगा? मैं बड़ी दुखी हूँ, चिंतित हूँ, इसीलिए तेरे को याद किया। बोले माँ ऋतु स्नान करके अर्थात मासिक धर्म का 7वां दिन हो जाए, फिर 8वां हो जाए, 10वां हो जाए, उन दिनों ये मेरे सामने आ जाए और मैं नज़र डालकर उनको गर्भवती कर दूंगा। स्पर्श से गर्भवती किया जा सकता है, संकल्प से किया जा सकता है, दृष्टि से किया जाता है और अवतार तो ऐसे ही अवतार चतुर्भुजी में से नन्हे मुन्ने हो जाते ही होता है और साधारण आदमी मैथुन से गर्भाधान करते हैं। माँ ने तीनों बहुओं को समझाया, आग्रह किया खूब। तो एक बहू गई तो सही उनके निकट, लेकिन कुलवती शीलवती थी, अपना पति तो स्वर्गवास हो गया और ये है बड़े जेठ, तो पीली सी हो गई। तो उसके इस गर्भ में बालक करा और जन्मा तो पीला सा था, उसका नाम पांडु पड़ा। उस पांडु के पांच पुत्र हुए पांडव, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम आदि। दूसरी गई तो शर्म के मारे अपनी आंखों पर हाथ मार, आंखें बंद कर दी, आंखों पे हाथ रख। तो कृष्ण द्वैपायन के संकल्प वाली गर्भाधान की दृष्टि तो पड़ी, लेकिन वो बालक अंधा पैदा हुआ। उसका नाम पड़ा धृतराष्ट्र, कौरवों का बाप। तीसरी गई नहीं, अपने बदले में दासी को सजा बुझा के अपने कपड़े वपड़े पहना के ठीक ठाक दासी को भेजा, तो वो पुत्र हुआ दासी पुत्र विदुर। लेकिन दासी सेवा सुमरण आदि करती थी और कृष्ण द्वैपायन का बड़ा आदर किया, इसलिए बड़ा बुद्धिमान भक्त बालक पैदा हुआ। कैसा सामर्थ्य है उस पुरुष में, महाभारत जब इन्होंने रचा तो देवताओं ने देखा कि वेद का सार, भाई मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, दिल से दिल मिलाकर जीना चाहिए, कदम से कदम मिलाकर कुटुंबियों को आगे बढ़ना चाहिए, आपस में फूट वैर खिंचाव या दूसरे की टांग खींच कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, समगच्छध्वं संवदस्व। तो इस प्रकार की सुंदर सीख वेदों का ज्ञान महाभारत में कहानी, किससे, इतिहास, दृष्टांत देकर ऐसा 100,000 श्लोकों का ग्रंथ रचा कि देवता लोग गदगद हो गए कि मानव जात का बड़ा भारी उपकार किया। मनुष्य के जीवन में अगर ज्ञान नहीं है तो मनुष्य तो कुत्ते से, गधे, घोड़े से भी गया बीता है। कुत्ता तो सीजन आती है तब काम विकार भोगता है, घोड़े गधे सीजन होती उनकी तभी कुछ कर्म ऐसे वैसे करते, पतंगिया तो रूप पर आसक्त होता है तो प्राण दे देता है, भौरा रस पर मुग्ध होता है तो प्राण खमा देता है, मछली रस पर होती है, भौरा सुगंध पर। लेकिन मनुष्य में तो पांचों है, काम विकार भी है, रूप देखने में भी फिसल जाता है, सूंघने में फिसल जाता है, स्वाद में फिसलता है, तो पांच फिसलाटे हैं मनुष्य के जीवन में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उन प्राणियों में तो एक है, तो जो एक एक फिसलाट में प्राण खो देते हैं तो जिनको पांच हैं उनकी क्या हालत होगी। रामायण ने कहा, अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आंच, तुलसी उनकी कौन गति जिनको व्यापे पांच। तो पांच पांच विकार हावी हो सकते हैं फिर भी मनुष्य और प्राणियों से श्रेष्ठ है। सनातन धर्म का साधक, सनातन धर्म के भगवान को अपना पिता ही नहीं मानता, भगवान खाली पिता ही है और बंधु नहीं हो सकते वो भगवान, वन वे ट्रैफिक वाले होंगे कोई। भगवान किसी वीर पैगंबर को ही भेजते हैं, खुद नहीं आते, तो होंगे कोई 5-स्टार में रहने वाले, कोई सेठों के सेठ जैसे उनसे भी बड़े। हिंदू धर्म का भगवान ऐसा नहीं कि कोई पैगंबर कोई भेज दे अथवा अपने बेटे कोई भेज दे। हिंदू धर्म का भगवान तो कहीं बैठकर दुनिया की और किसी पैगंबर को या किसी बेटे को भेज दे, इस प्रकार का नहीं है। हिंदू धर्म तो मानता है, वेद मानता है कि भगवान जो भरण पोषण करने की सत्ता, गमनागमन की, वाणी के उठने की और सब नहीं होने के बाद भी जो सदा रहता है, सब में व्यापा रहता है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सबका अपना है। कीड़ी में भी उसकी चेतना है और ज्ञान है, तभी तो कीड़ी नमक को और शक्कर को पहचानती। मच्छर में भी उस ज्ञान की सत्ता परमेश्वर की है। इसीलिए सनातन धर्म कहता है, तुम भगवान को कैसा कहता कि तुम मेरे पिता ही हो, नहीं तुम एवं माता, तुम मेरी माता भी हो। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि हे कृष्ण रूपी माँ, तू कब सुनेगी मेरी प्रार्थना। अद्वैत के प्रचार भगवान को माता रूप में भी जान सके ऐसी सुंदर व्यवस्था वेदों की। तुमेव माता च पिता तुमेव, माँ बाप नहीं बन सकती और बाप माँ नहीं बन सकता, लेकिन मेरा परमेश्वर तो माँ भी बनकर लीला कर रहा है और बाप के अंदर भी जी रहा है। बंधु और सखा में और गुरु में उपदेश देकर मेरा प्रभु बैठा है और चेलों में सुनने के लिए बैठा है। कितना ऊंचा ज्ञान है वेद भगवान का। उसी ज्ञान को श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को कहा, तो ऐसा मत समझ के राजे महाराजे मर जाएंगे। अरे ये पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेगा, लेकिन इनका शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी देर सबेर मरने वाले तो हैं ही हैं। तेरे को तो काली निमित्त होना है बस अशुभ को हटाने के लिए। तो आपका हमारा शरीर अभी ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन आप और हम आत्म रूप से पहले भी थे, अभी भी बाद में भी रहेंगे। तो मरेगा तो शरीर मरेगा कि तुम मरोगे? नहीं। तो जो कभी नहीं मरता वो आत्मा है, परमेश्वर है, ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है। उसको खोज लेना, उसको पा लेना, उसमें ध्यानस्थ होना एक बड़ी बात है सनातन धर्म की। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या। विद्या शक्ति के केंद्र में भी तुम्हारी चेतना है, स्मृति में भी तो तुम ही हो। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम। पेड़ में जो रस खींचने की सत्ता है तो तुम्हारी है, धरती में जो इतना इतना फल उपजाने की सत्ता है तो धरती में तुम्हारी चेतना है, चंदा में तुम्हारी चांदनी है, तुम्हारा कपाह है, तुम्हारा प्रसाद, इसलिए औषधि पुष्ट होती है। सूर्य में तुम्हारी सत्ता, इसलिए सूर्य नारायण को भी हम पूजते हैं। तो ऐसा नहीं कि आग के गोले की पूजा होती, नहीं, सूर्य में जो मेरे प्रभु हैं, सूर्य स्वरूप, उनका आदर। तो ऐसा दिव्य ज्ञान आम आदमी को वेदों का मिल जाए, इसलिए महाभारत और भागवत जैसे ग्रंथ की रचना की। तो देवताओं ने वरदान दिए कि तुमने ऐसी बढ़िया व्यवस्था की। कृष्ण द्वैपायन, तुम सचमुच महापुरुष नहीं, कारक पुरुष भगवत स्वरूप व्यास जी हो। तो इस आषाढ़ी पूनम को व्यास पूनम और बड़ी पूनम, गुरु गुरु पूनम का पूजन, इसका मतलब मास्टरों का पूजन नहीं, शिक्षकों का, प्रोफेसरों का, अथवा गाना बजाना सिखाने वाले उस्तादों का या दंगल सिखाने वाले उस्तादों का गुरु पूनम नहीं होता है। और गुरु पूनम के नाम से उस्ताद भी बोलते रहे, गुरु पूनम आई छोरा रखना रेल, हमारी पूजा कर ले छोरा, तुम्हारा कसरत सिखाए, कुश्ती सिखाए तरह है, कौन जानते थे तुमको, इतना लोग जानते तो हम गुरु है ना, गुरु पूनम आई पूजा करके देख बेटा। तो पहले हम गुरु की पूजा की बात नहीं है, शिक्षक मास्टर के गुरु की पूजा नहीं, जो हमारे मन इंद्रियों के आकर्षणों से हमको बचाकर भगवत रस के तरफ ले जाने में श्रोत्रिय हो, अर्थात शास्त्रों का ज्ञान हो और परमात्मा रस का अनुभव कर रहे हो और कराने की रीत भात जानते हो, सत परमात्मा में स्थिति हो, ऐसे सतगुरुओं को व्यास की स्मृति में गुरु पूनम के अवसर पर अपने अपने सतगुरु जो ब्रह्मज्ञानी है, ऐसे अपने सतगुरुओं को, मास्टरों को, अखाड़े के पहलवानों, उस्तादों को, टीचरों को गुरु पूनम के लिए पूजना, ऐसा नहीं है। देवी देवता कृष्ण राम की पूजा करो फिर भी पूजा रह जाती, लेकिन सतगुरु की पूजा करने के बाद सारी पूजा पूर्ण हो जाती। और वो सतगुरु की पूजा, वो सतगुरु की पूजा व्यास पूर्णिमा के निमित्त करें तो वर्ष भर के पूर्णिमाओं का व्रत उपवास का पुण्य तो होता है, लेकिन गुरुओं की पूजा क्या करें? गुरु को अर्घ्य पाद आदि से गुरु का पूजन करें मानसिक, फिर गुरु को पुष्पों की माला पहनाए, तिलक करें और उनके तरफ एक टक देखे, देखते देखते उनके ज्ञान की स्मृति करें। अरे एक पानी का प्याला कोई पिलाता है तो धन्यवाद देना पड़ता है, नहीं तो गुण चोर होने का दोष लगता है। किसी ने कुछ रोटी खिला दी अथवा हमें थोड़ी मदद कर दी चार पैसे की, तभी भी निगुणा नहीं बनना चाहिए, कृतघ्न नहीं होना चाहिए। कृतघ्न आदमी कृतघ्न आदमी बड़ा भारी पापी माना जाता है। किसी ने अच्छा किया और आप उसका अच्छा भूल गए, जब संसारी बात में कृतघ्न आदमी दोषी हो जाता है, तो गुरु ने इतना सारा खजाना दिया, इतना पुण्य और इतना सुखद जीवन जीने की कला दी, तो ऐसे गुरुओं के बोझ से हम दब मरे और जन्मे मरे या हमारा ज्ञान कहीं नष्ट न हो जाए, हमारी भक्ति और साधना बिखर न जाए, हम उनकी कृतज्ञता व्यक्त करें। तो कृतघ्नता के पाप से दोष से बचे, कृतज्ञता व्यक्त करें और नया प्रकाश नया उत्साह, पुराने साधकों का संग मिलेगा, नयों को उत्साह मिलेगा और पुरानों को कुछ और नई साधना भजन की कुछ रीत मिलेगी। तो जैसे दिवाली के दिनों में सेठ लोग अपना व्यापार, क्या कमाई हुई, क्या घाटा हुआ, क्या चीज चली, क्या झांगड़ पड़ी रही, ऐसे वर्ष भर का जैसे दिवाली में धनी धंधे का चोपड़ा होता है, ऐसे व्यास पूर्णिमा आध्यात्मिक एक प्रकार का हिसाब किताब और उत्साह भरने का अवसर, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर, गुरु की कृपा और अपनी श्रद्धा को उभारने का अवसर। तो तब तक साधक भक्त लोग अन्न नहीं ग्रहण करते जब तक व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा को अपने सतगुरु का पूजन दर्शन न कर पाए। तो सभी लोग स्थूल रूप से पूजन करें तो संभव नहीं, तो हम तो मानसिक रूप से हमारे गुरुदेव को स्नान करा देते, कपड़े पहना देते, फिर मन के ही लड्डू खिलाना तो तेल के बनाना क्यों। इधर एक साधु आया मेरे पास, अपना दीक्षा लिया, रामानंदी साधु था, दीक्षा लिया, फिर इधर एक 2-5 वर्ष रहा, तो आंखें मूंद के बैठा, मैं उसकी कुटिया में गया, मेरे फोटो के आगे बड़ा ही हो रहा है, मजा ले रहा है। तो हमने उसका नाम रखा था विनोद में ब्रह्म, वो ब्रह्म ज्ञान की बात सुनता था और ब्रह्म चिंतन के बाद मैं कह रहा ब्रह्म क्या कर रहा है, ओ गुरु गुरु जी गुरु जी गुरु जी, मेरा पूजा सफल हो गई। मैं क्या क्यों, बोले गुरु जी मैं तो आपको नहला दुला के और भोग लगा रहा था। मैं क्या क्या खिला रहा था, बोले 1.25 मन देसी घी के लड्डू। अरे 1.25 मन, बोले गुरु जी मानस पूजा में खर्चा तो होता नहीं, फिर थोड़े से क्यों रखे। मन का ही खाना तो तेल का लड्डू बनाना क्या, मैं तो देसी घी का बनाया। तो मानस पाप कलयुग में नहीं होता, मानस पुण्य हो जाता है। तो मानसिक पूजन कर लिया, सुमरण कर लिया और उन्होंने जो बताया उसको अपने जीवन में उतार कर सुख दुख के थपेड़ों से बचते हुए जीवन यात्रा आगे बढ़ाने की सुंदर व्यवस्था जिस महापुरुष ने की, जो भी कर रहे हैं, तो उनके ऋण से उऋण होने के लिए, उनकी कृपा विशेष झेलने के लिए और अपने हृदय को भगवत सुख से भरने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। तम नमामि गुरुं परम, नमामि गुरुं परम। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि फुला, वे वेदों में प्रणवकी ओम की महिमा है। भगवान ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म ज्ञान पाए हुए व्यास स्वरूप ब्रह्म ज्ञान, उनकी और स्तुति महिमा हम नहीं जानते तो क्या करें कि वो कैसे हैं क्या है। तुम सच्चिदानंद हो, तुम शाश्वत हो। जो गुरु को शरीर मानता है वो स्वयं शरीर के मोह से पार नहीं हो सकता। गुरु को शरीर में ही न देखे, गुरु सर्वेश्वर परमेश्वर चिदाकाश स्वरूप आत्मदेव है, सर्वव्यापक सत्ता सहज सत्ता स्वरूप है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापा है और मेरे घड़े में भी है, ऐसे ही मेरे हृदय में और सर्वत्र जो बस रहे वो मेरे गुरु ब्रह्मा जी स्वरूप है। हमारे अंदर अच्छे संस्कार उत्पन्न कर मेरे गुरु विष्णु स्वरूप है। सत साधना को पोषते हैं मेरे गुरु शिव स्वरूप है। मेरे जीव भाव के और हल्के संस्कारों को नष्ट करते, इतने से भी संतोष नहीं है ऋषि को। ऋषि कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्मा है। ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश्वर भी है, लेकिन उतने ही नहीं, वो साक्षात परब्रह्म व्याप रहे हो तुम। तस्मै से गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के वचन का अनादर नहीं करना चाहिए, गुरु के संकेत का अनादर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके प्रयत्न पूर्वक महापुरुषों के सत्संग का वचनों का आदर करके, और गुरु से कपट और झूठ तो सीधा नरक का पासपोर्ट देता है। सब जगह इधर उधर करे लेकिन गुरु के द्वार अगर सीधा हो गया तो काम बन गया, सब जगह अच्छा है, लेकिन गुरु के द्वार गड़बड़ की सर्वनाश। इसलिए साधारण व्यक्ति की सेवा से जो पुण्य होता है, सदगुरु की सेवा से अनंत गुना होता है। ऐसे साधारण व्यक्तियों से जो धोखाधड़ी होता है तो गुरु से करने में अनंत गुना होता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे भी नश्यति। अन्य जगह किया हुआ पाप तीर्थ में व्रत नहाना जप ध्यान करने से अन्य जगह का पाप माफ हो जाता है तीर्थ में, लेकिन तीर्थ में किया हुआ पाप वो वज्रलेप हो जाता है। तो गुरु का स्थान, गुरु का निवास, गुरु की साधना स्थली जागृत तीर्थ बनाया जाता है।